الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأمه صديقة، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ربنا زدنا علما. اس کلاس میں اپنے حضرت پیر ذوالفقار احمد نقشبندی دامہ اوقات ان کی کتاب مثالی عورت میں سے مثالی ماں کا موضوع پڑھتے ہیں، اور اس میں آج جو ہے وہ پیج نمبر 138 کے اوپر سے شروع کرنا ہے. پیچھے کا تھوڑا سا ریکاپ کرتے ہوئے کہ مثالی ماں کے موضوع بہت سارے
ہاں
جن میں چھوٹے بچوں کی تعلیم و تربیت کیسے کی جائے. ٹھیک ہے، سب سے پہلے چھوٹے بچوں کی حضرت نے تعلیم اور تربیت، ٹھیک ہے، یعنی صرف تربیت نہیں بلکہ تعلیم بھی ماں کو کرنی چاہیے چھوٹے بچوں کی، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ کر سکتی ہے. اگر کم بھی اس نے پڑھا ہوا ہے نا، تو بھی چھوٹے بچوں کی تعلیم اتنی زیادہ ہوتی نہیں ہے جتنا کہ اس کو بنا دیا گیا ہے اسکول سسٹم والوں نے. تو کم تعلیم کی ضرورت ہوتی ہے چھوٹے بچوں کو. اگر ماں کے پاس وہ تعلیم موجود نہیں ہے تو وہ آسانی کے ساتھ وہ تعلیم حاصل کر سکتی ہے، ٹھیک ہے. اور اگر ہے پہلے سے موجود تو پھر اس کے بعد بہانے بنانا کہ نہیں میں نہیں کر سکتی، یا مجھے نہیں آتا، یا مجھ سے نہیں ہوتا، ظاہر ہے پھر بہانے بنائے گی تو اس کو نقصان ہوگا اپنے بچوں کی غلط تعلیم و تربیت کی شکل میں. اور یہ بھی تھا کہ اگر آپ یہ سمجھتی ہیں کہ تعلیم جو ہے نا وہ میں اسکول سے دلوا لوں گی لیکن تربیت میں خود سے کر لوں گی، تو یہ بھی ایک بہت بڑا دھوکہ ہے، بہت بڑا جو ہے نا وہ فریب ہے زمانے کا. وہ یہ کہ تعلیم الگ اور تربیت الگ، حالانکہ ایسا نہیں ہوتا. تعلیم کے راستے سے ہی تربیت ہوتی ہے، تعلیم کے راستے سے ہی تربیت ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا. تو اسکول والوں سے جو تعلیم مل رہی ہے نا، تو وہیں سے تربیت بھی ہو رہی ہے، ٹھیک ہے. مزے کی بات، ابھی کل ہی جو ہے نا ہمارے بیٹے صاحب نے مفتی صاحب سے، وہ قرآن مجید پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، تو انہوں نے کل بات کوئی چل رہی تھی تائے ابو اور ابو کے درمیان، تو وہ بھی پیچھے گاڑی میں بیٹھے ہوئے تھے، تو بتانے لگے کہ مفتی صاحب بتا رہے تھے کہ ان سے جو ہے نا وہ ایک بچی پڑھتی ہے. کیا پڑھتی ہے؟ قرآن مجید پڑھتی ہے، ٹھیک ہے نا. پاکستانی بیک گراؤنڈ ہی کی ہوگی یا زیادہ سے زیادہ انڈین بیک گراؤنڈ کی ہوگی. تو وہ بچی جو ہے نا وہ ان سے پڑھتی ہے، تو اس نے جو ہے نا وہ ان کو ایک سرٹیفکیٹ دکھایا ہے کہ مفتی صاحب مجھے اسکول سے سرٹیفکیٹ ملا ہے، ٹھیک ہے. تو مفتی صاحب نے پوچھا بیٹا یہ کس چیز کا سرٹیفکیٹ ہے؟ تو بچی نے جواب دیا کہ یہ مجھے ڈانس کمپٹیشن میں سرٹیفکیٹ ملا ہے، ڈانس کمپٹیشن، ٹھیک ہے. تو ماشاء اللہ کیا بہترین ہے دین دنیا ساتھ ساتھ، امریکہ نے آگ لگائی. وہ کہتے تھے بچپن میں، نہیں وہ لڑکپن میں نا کالجوں میں کہتے تھے شیعہ سنی بھائی بھائی، امریکہ نے آگ لگائی، ٹھیک ہے نا. تو اس کو ہم نے اس طرح سے چینج کیا کہ دین دنیا بھائی بھائی یا دین دنیا ساتھ ساتھ، مولویوں نے جو ہے نا وہ مشکل بنائی، ٹھیک ہے. مولوی کہتے ہیں کہ نہیں یہ دونوں ساتھ ساتھ نہیں چل سکتی، حالانکہ دونوں ساتھ ساتھ چل، ہم دیکھو ہم چلا رہے ہیں نا، ہم قرآن مجید بھی پڑھا رہے ہیں اور ہم جو ہے وہ ڈانس بھی سکھا رہے ہیں. اور ڈانس جو ہے وہ ظاہر ہے قرآن مجید کے تلاوت پہ تو نہیں ہوتا نا بھائی، کس پہ ہوتا ہے ڈانس؟ رائٹ، قرآن مجید کی تلاوت، پیچھے نشید چل رہی ہوتی ہے. ویسے آج کل نشیدیں بھی ایسی ہو گئی ہیں کہ شاید اس پہ بھی ڈانس ہو سکتا ہوگا، ٹھیک ہے. تو ڈانس تو پھر میوزک کے اوپر ہوتا ہے نا، ٹھیک ہے. تو اب مفتی صاحب نے بیچارے بچے ہوئے، اچھا ٹھیک ہے میں آپ کے ابو سے بات کرتا ہوں. صحیح ہے. بہرحال تو بھائی تعلیم آپ ادھر سے دلوائیں گے نا، تربیت بھی ادھر ہی سے ہو رہی ہوگی، اور وہ بھی آپ کے بچوں کے اندر جو ہے نا وہ ڈانس بھی اور میوزک بھی اور ساری کی ساری جو ہے نا وہ شرک بھی اور بدعت بھی اور اللہ کی نفی بھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تزہیق بھی اور سب کچھ اس کے اندر آپ کے بچوں کے اندر داخل کر رہے ہیں. آپ کو نہ نظر آئے تو آپ اندھے ہیں، رائٹ، آپ کو نہ نظر آئے تو آپ اندھے ہیں، لیکن اندھے ہونے کا مطلب یہ کوئی تھوڑی ہوتا ہے کہ کوئی چیز ہے نہیں، وہ تو ہو رہی ہے، ٹھیک ہے نا. وہ ہمارے مشائخ فرماتے ہیں آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے، آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے، دیدہ کور کو کیا آئے نظر کیا دیکھے. है ना, जो अंधा है उसको क्या नजर आए भाई, वो तो आंख वाले होते हैं, उनको नजर आता है ना कि जब हिरन के ऊपर जो बनाता है वो उछलता है कूदता है, वो आंख वालों को नजर आता है। ठीक है, अल्लाह ताला से बसीरत मांगनी चाहिए। बड़े मजलूम बने फिरते हैं हम अपने जुल्म की दुहाई अल्लाह ताला को बड़ा देते हैं, हम अपने मजलूमियत की दुहाई देते हैं, कभी अपने जुल्म की दुहाई दे करके भी दुआ मांगे कि अल्लाह आप मेरी आफियत के साथ इस्लाह फरमा दीजिए, आप आफियत के साथ मुझे जुल्म करने से बचा दीजिए, कभी इसकी भी दुआ मांग करके ट्राई करनी चाहिए। ठीक है ना, खाली मजलूमियत की ढंडोरा पीटते हैं बंदों के सामने भी और अल्लाह के सामने भी, ए अल्लाह मैं मजलूम जालिम को आप बर्बाद कर दीजिए, तबाह कर दीजिए, और मेरी मजलूमियत में मेरी मदद कर दीजिए, अपना जुल्म नजर नहीं आता, क्योंकि अंधे हैं, सूर्य से नजर नहीं आता, कुछ भी नजर नहीं आता, ना दूसरों के गलत नजर आता है ना अपना गलत नजर आता। तो छोटे बच्चों की तालीम और तरबियत कैसे की जाए, मिसाली माँ यहाँ से शुरू हुआ था ये टॉपिक। उसके बाद फिर फरमाते हैं कि अगला टॉपिक, इसके ऊपर इतना सारा कुछ था कि पता नहीं कितने महीने हमने लगाए इसके ऊपर ना। फिर उसके बाद बलूगत की उम्र के बच्चों की तरबियत, जब बच्चे बलूगत की उम्र को पहुंच जाए, अब वो छोटे नहीं कहलाते, बालिग हो चुके होते हैं या बालिग होने वाले होते हैं, तो उनकी फिर तालीम का लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया, तरबियत का लफ्ज इस्तेमाल किया, क्योंकि उनकी तालीम जो होती है ना ये फिर उस माँ के, अक्सर माओ के बस की बात नहीं होती। फिर उसके बाद जो है ना, फादर हैज टू ज्वाइन इन, अगर होम स्कूलिंग करनी है तो फादर हैज टू ज्वाइन इन, फादर की मदद के बगैर ये काम नहीं हो सकता। ये और बात है कि फादर के लिए जरूरी नहीं है कि वो हर चीज पढ़ाए, बल्कि उसको मैनेज करना होता है, इसके लिए फिर प्राइवेट ट्यूशंस के जरिए से भी तालीम का इंतजाम किया जा सकता है, वरना अगर स्कूलों के अंदर बच्चों को भेज ही रहे हैं तो भाई स्कूल देख करके भेज रहे हैं, कौन चला रहा है, किसका बनाया हुआ स्कूल है, क्या आइडियोलॉजी वहाँ फॉलो हो रही है। ठीक है, तो बलूगत की उम्र के बच्चों के लिए फिर बाकी जो बाकी मानदा तरबियत रह गई है वो फिर आप करें उनकी। ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले बात हुई थी ना कि निकाह करने से मसले हल नहीं होते, अगर आपने पहले से जो है ना वो खराब किए हुए हैं तो निकाह करने से वो हल नहीं हो जाएंगे, पहले से तालीम और तरबियत जो है ना वो अच्छी करी होगी, फिर उसके बाद निकाह की भी जरूरत होती है ताकि कायम रह सके, वरना अगर निकाह नहीं किया तो पीछे की सारी तालीम और तरबियत की जो मेहनत थी ना वो चली जाएगी, सिंक में चली जाएगी, सिंक होल के अंदर चली जाएगी, वो सारी की सारी जो है ना वो इवेपोरेट हो जाएगी, आपकी सारी तालीम और तरबियत इवेपोरेट हो जाएगी अगर आपने वक्त पे निकाह नहीं किया। ठीक है, पिछली क्लास में किसी ने सवाल किया था कि एग्जैक्ट एज क्या होती है निकाह करने, तो भाई आपके सवाल का तो जवाब देने का दिल भी नहीं चाह रहा, इस किस्म के सवाल करेंगी तो इसी किस्म का जवाब मिलेगा कि 22 साल 13 महीने और 2 मिनट और 3 दिन, इसी किस्म का जवाब मिलेगा, एग्जैक्ट एज क्या होनी चाहिए। ठीक है, तो सवाल जैसा होगा जवाब इसी किस्म का होना जरूरी होता है, फिर अपनी अकल इस्तेमाल करें, और अगर नहीं है तो अल्लाह से मांगें, अल्लाह मुझे अकल से नहीं बता, ताकि मैं बच्चों की, अपने बच्चों की ना एज का जो है वो फैसला सही कर सकूं। नौजवान बच्चों के वार्निंग साइंस, खतरे की निशानियां, इसके ऊपर बहुत बात हुई थी, नौजवान बच्चों के मसाइल पे बात हो चुकी है, लड़कों की तरबियत के चंद रहनुमा उसूल ये भी हम पढ़ के मुकम्मल कर चुके हैं, और आखिर में बिल्कुल बच्चियों की तरबियत में एक खास बात। ठीक है, तो ये बच्चियों की तरबियत जो है वो मिसाली माँ के तहत हजरत ने जरा बड़ी मुख्तसर सी रखी है, क्यों, इसलिए कि शायद इसलिए कि मिसाली बेटी का जो मौजू था उसके अंदर ये सारी चीजें जो है ना बड़ी तफसील के साथ हजरत बयान कर चुके हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर थोड़ा सा मुख्तसर रख दिया बच्चियों की तरबियत में एक खास बात, जो बेटियां होती हैं उनको मॉडेस्टी, शर्मो हया सिखानी चाहिए, बच्चियों के अंदर हया होनी चाहिए। बच्चियों के अंदर हया कैसे आती है, जल्दी से बता रहे हैं इसका जवाब, बच्चियों के अंदर हया कैसे आएगी जी, कैसे सिखाएंगे उनको हया, मॉडेस्टी। ये अभी तक चला है,
उसी वक्त मिक्सल आर्ट की भी कोई प्रॉब्लम होना था, मिक्सल आर्ट चल नहीं पाया असल में, देखा नहीं। क्या लिखा, खुद करके, ठीक है जी, बिल्कुल सही फरमाया आपने, खुद मॉडेस्टी पे अमल करके। और दूसरा कहा, जो जब वो अपनी माँ को मॉडेस्ट देखते हैं, खुद के अंदर हया होगी वही बच्ची सीखेगी। ठीक है, बिल्कुल सही है। बीइंग आवरसेल्व्स ए रोल मॉडल फॉर देम, बीइंग रोल मॉडल फॉर देम, माँ के अमल से बेटी सीखती है। ठीक है, लेकिन दूसरी बात भी बहुत जरूरी है, ये खाली आपने एक एक बात करी है, वन साइड ऑफ द पिक्चर, वन साइड ऑफ द स्टोरी, दूसरी साइड ऑफ द स्टोरी के बगैर ये पिक्चर मुकम्मल हरगिज नहीं होगी। वो क्या, कि सिर्फ माँ के हया से भी फायदा नहीं होता अगर आपने उसको बुरे माहौल से नहीं बचाया, अगर आपने उसको बेहयाई के माहौल से नहीं बचाया, जो माहौल कहाँ से मिलेगा, आपके खानदान से मिलेगा, राइट? चाहे वो ननियाल से मिले, चाहे वो ददियाल से मिले, चाहे वो दोनों से मिले, तो बुरा माहौल खानदान से मिलता है, बुरा माहौल जो है वो पास पड़ोस से मिलता है, बुरा माहौल दोस्त अहबाब से मिलता है, और बुरा माहौल स्कूल कॉलेज से मिलता है। माँ जो है ना, वो तो शर्मो हया की देवी बनी हुई है, राइट? बीवी मरियम की जो है वो सुन्नत पे अमल करने वाली है, बजाहिर बीवी मरियम की सुन्नत पे अमल करने वाली है, लेकिन बेटी को जो है ना वो गलीज माहौल के अंदर भेजने में सबसे आगे है ना, उसके बगैर तो जो है वो उसको, उसकी दुनिया खराब हो जाएगी, इसकी दीन भी खराब हो जाएगा, उसके बगैर जो है वो उसको रिश्ता नहीं मिलेगा, उसके बगैर ये नहीं होगा वो नहीं होगा, तो फिर आपकी हया और पाकदामनी, उसको कहते थे हमारे यहाँ उसकी, बहरहाल अच्छे अल्फाज नहीं थे वो, कोई आप अपने हया और पाकदामनी पर अपने पास रखें, इसका कोई फायदा नहीं है, आपकी बेटी को कोई फायदा नहीं होगा कम से कम। ठीक है, तो दोनों चीज, दोनों डायमेंशंस, डायमेंशंस का ख्याल रखेंगी तब फायदा होगा। हमारे यहाँ तो अल्लाह रहम करे, जो शैतान ने जो है ना वो डेफिनेशंस डाली हुई है, पहले भी बात हो चुकी है आप लोगों के दरमियान, आप लोगों के साथ, के बोल्ड बनाना, बच्ची को बोल्ड बनाना है, कि मैं बोल्ड ना बन सकी तो मैं अपनी बच्ची को बोल्ड बनाती हूँ। तुम्हारे, तुम्हें पता भी है बोल्ड का मतलब क्या होता है, तुम बोल्ड ना बन सकी, व्हाट डू यू मीन बाय बोल्ड, राइट? किस चीज की बोल्डनेस तुम्हें चाहिए, किस चीज का तुम्हें हिम्मत और हौसला चाहिए, राइट? अल्लाह के हुक्मों पर अमल करने के लिए तुम्हें बोल्डनेस नहीं चाहिए, राइट? दीन को मजबूत पकड़ने के लिए तुम्हें बोल्डनेस नहीं चाहिए, तुम्हें बोल्डनेस किस चीज की चाहिए, मर्दों के सामने खड़े होकर के आंखों में आंखें डाल करके बात करना, ये तुम्हारे नजदीक बोल्डनेस की तारीफ है, राइट? या जो है ना वो, जैसे पाकिस्तान में आमतौर पर होता है कि जी जो है वो आप लाइन में खड़े हुए तो आगे बंदा जो है ना वो लाइन में आके खड़ा, आपके आगे खड़ा हो जाता है, तो हमारे यहाँ बोल्डनेस किस चीज को कहते हैं, आप उसके साथ लड़ना शुरू करते हैं, राइट? उसके साथ जो है ना वो, यानी बहस मुबाहसा शुरू कर देना, और बल्कि अभी तो हम, प्लेन में आ रहे थे ना इज्तिमा से वापस, लाहौर से रियाज की फ्लाइट थी, तो मुझे जाहिर है वो जागे हुए थे पता नहीं कितनी देर के, आंख लग गई एकदम से, है ना वो चीख चिल्ला शुरू हो गया उसकी, उससे जो है मेरी आंख खुल गई, तो वो चीख पुकार की आवाजें क्या हो रही थी, वो दो औरतें एक मर्द से लड़ रही थी, और लड़ भी कैसे रही थी, अंग्रेजी में लड़ रही थी, बड़ी जबरदस्त लड़ाई हो रही थी अंग्रेजी में, वो भी थे सारे के सारे पाकिस्तानी, पाकिस्तान से ही निकल करके प्लेन में बैठे थे, ठीक है ना? तो वो ऐसी बहस, ऐसा शोर होगा, मेरी तो आंख खुल गई, और पूरा जो है ना वो, फिर एयरक्राफ्ट का क्रू भी जो है वो भी आ गया, वो भी उनको रोकने की कोशिश कर रहा है, लेकिन कोई नहीं सुन रहा उनकी बात, हत्ता कि उसने पता नहीं क्यों उसने वार्निंग देनी शुरू कर, आई एम वार्निंग यू, आई एम वार्निंग यू, जो ना वो सऊदी था क्रू का मेंबर, उन्होंने कहा तुम्हारी ऐसी की तैसी किस बात की, मुझे वार्निंग दे रहे हो तुम, वो लड़ते रहे अपना, ये बोल्डनेस है हमारे यहाँ, है ना, अपने हक के लिए लड़ना, यानी जिसको आप हक समझते हैं आप उसके लिए जो है वो लड़े, चाहे जिससे भी लड़े, जिस माहौल में भी लड़े, सबकी से बेपरवाह होकर के आप लड़े, ये है बोल्डनेस हमारे, ठीक है? तो बोल्डनेस की तारीफ शैतान ने हमें ये बना दी है, इस वजह से जो है ना वो शर्मो हया जो है वो डिक्शनरी में से निकल गई,
ठीक है ना, ये जो है ना फिर वो दकयानूसी चीज बन गई, ये बीमारी बन गई, ये जो है वो बेकार किस्म की चीज बन गई, ये नाकामी की दलील बन गई, शैतान ने बना दी, हमने उसको कबूल कर लिया। अब तो ये हाल है कि काला बुरका भी पहनी हुई होती है और वो वाली बोल्डनेस वो भी चल रही होती है, काला बुरका पहन करके हर एक से जो है वो तफरी चल रही है, हंसी मजाक चल रहा है, राइट। और काला बुरका पहन करके जो है ना वो यूनिवर्सिटी के अंदर भी जो है वो जा करके स्टेज पे जा करके यही बोल्डनेस है भाई, और काला बुरका भी साथ साथ है, ठीक है, काला बुरका पहन करके आप जो भी करें, ठीक है। तो ये बुनियादें जो है ना वो हमारी खत्म कर दी हैं शैतान ने, और शैतान ने अपने इस नई तहजीब के जरिए से हमारी बुनियादों को खत्म कर दिया। अब उसके ऊपर आप जो है ना वो काला बुरका पहन करके खुश होते रहे, बस ये आपके लिए ये धोखे के सवाए कुछ नहीं है, काले बुरके की ऐसे कुछ नहीं। चाहे आप काला बुरका पहन करके खुश हो, चाहे आप लंबी सी दाढ़ी लगा करके खुश हो, आपकी बुनियादें खत्म हो चुकी, क्योंकि आपने जो दीन की असल बुनियादें हैं ना उनकी आपने नफी करी हुई है। ऊपर से जो है वो आप तमाशे कर करके जो है वो खुश हो रहे हैं, इसी को दजल भी कहते हैं, इसी को फरेब भी कहते हैं, और हम दजलो फरेब वाले जमाने से ही गुजर रहे हैं। फिर दूसरी बात लिखते हैं कि घर के कामों के करने में उनको कोई झिझक नहीं होनी चाहिए, ठीक है, घर के कामों के करने में झिझक नहीं होनी चाहिए। ये झिझक भी कहाँ से आती है, ये वालदा साहिबा डालते हैं या वालिद साहब डालते हैं या दोनों मिलकर के डालते हैं, ठीक है ना। वालिद साहब कभी जो है वो अपनी बेटियों से ज्यादा मोहब्बत करते हैं, कहते हैं नहीं मेरी बेटियों को जो है ना वो तकलीफ नहीं होनी चाहिए, उनको जो है वो मैं दुल्हन बना करके रखूंगा, शादी बेशक नहीं करूंगा उनकी लेकिन बचपन से उनको दुल्हन बना के रखूंगा, ठीक है ना, क्योंकि दुल्हन जो है ना वो कामकाज कहाँ करती है, ठीक है। या कभी जो है माओ का जो है वो नफ्सियाती मरीज होती है, कोई और मसला होता है, उन्होंने अपनी बेटियों से काम नहीं करवाने होते, अल्लाह ताला ने माल और दौलत दी हुई है और जो है वो घर के अंदर नौकर चाकर हैं, तो अब खुद काम करना ही नहीं है बिल्कुल, ठीक है ना। इससे जो है ना वो आदतें बहुत खराब हो जाती हैं और ये चीज जो है ना फिर बाद में जा करके बहुत बहुत मुश्किल का सबब बन जाती है, जब काम काज करने की बिल्कुल आदत नहीं होती। हमने ऐसे हौलनाक एग्जाम्पल्स देखी हैं इसकी कि हम आपको बता नहीं सकते, कुछ तो आपके अपने ही पोल ना खुल जाए कहीं, राइट। ऐसे बुरे बुरे एग्जाम्पल्स हैं इस वक्त मौजूद कि बिल्कुल कुछ काम काज करना नहीं आता, एक जो है ना वो रानी बनकर के, सॉरी रानी तो किसी का नाम भी हो सकता है, उनकी बात नहीं कर रहा, लेकिन पता नहीं क्या शहजादी बनकर के घर में बैठी हुई है और पता नहीं क्या उनको कुछ भी करना नहीं आता। अब जो है वो नौकरों के जान को आई हुई है, नौकर जो है ना वो मोहल्ले में जा जा करके शिकायतें कर रहे हैं, या नौकर जो है वो सर सर पकड़ के बैठे हुए हैं, है ना, खुद कुछ भी नहीं करना बल्कि और ज्यादा काम बढ़ाना है, बस काम बढ़ाना है, गंद फैलानी है, ऐसी भी मिसालें मौजूद हैं, ठीक है। तो भाई बेशक अल्लाह ने आपको दिया है, आपके घर पे नौकर चाकर हैं, अगर फिर भी काम खुद करने की आदत होनी चाहिए, ठीक है, हत्ता के अगर नौकर छुट्टी पे चला जाए ना किसी वजह से, तो उसके पीछे पड़ करके उसको जो है ना मजबूर करके मत बुलाएं, बल्कि उस वक्त याद रखें कि ये अच्छा मौका है, अब जो है ना वो हम खुद घर घर का काम करें आदत की खातिर, ताकि आदत हो, और किसमें जो है ना वो कोई अपनी बुराई ना समझे इसके अंदर, ठीक है। ये अपनी औलाद के साथ खैर ख्वाही है, और दूसरी शक्ल जो है ना वो औलाद के साथ बदख्वाही है कि आप उसको कोई काम नहीं करने दे रहे, ठीक है। तो सफाई सुथराई, अपने कमरे की सफाई हो, घर के दूसरे लाख जगहों की सफाई हो, हत्ता के बाथरूम की सफाई, ये क्या मजाक है कि भाई बाथरूम साफ करने से जो मुझे घिन आती है, मैं नहीं साफ करती, पानी नहीं है तुम्हारे बाथरूम के अंदर, अल्लाह ताला ने तो अब इतना आसानी कर दी है, मुस्लिम शावर्स होते हैं, दूसरे तरीके होते हैं, राइट, ड्रेन है बाथरूम के अंदर, वो तो अल्लाह भला हो, अमेरिका वगैरह के अंदर तो बाथरूम में ड्रेन भी नहीं होता, फ्लोर के अंदर, वहां पे तो सफाई करना ज्यादा मुश्किल काम होता है बाथरूम की, इसलिए कि वो गंदे लोग होते हैं, गलीज लोग होते हैं, नापाक लोग होते हैं। हमें तो अल्लाह ताला ने अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान, इंडिया, मिडल ईस्ट है, वो जमीन पर ड्रेन बनाते हैं ताकि आप आराम से जो है वो हर चीज को पानी से साफ करें और जो है वो ड्रेन के जरिए से वो पानी सारा का सारा चला जाएगा, ठीक है। तो ये क्या तमाशा है कि नहीं जी बाथरूम साफ नहीं करना, लड़कों को भी आना चाहिए लेकिन लड़कियों को फूल और छुई मुई और इस किस्म के बना करके मत रखें, ठीक है ना। अब देखें, यानी मैं अच्छी मिसाल नहीं दे रहा, लेकिन बात समझने की खातिर, ठीक है ना, कि देखें इवन दुनियादार काफिर लोग भी इस बात को समझते हैं। आपने सुना होगा शायद कि ये जो आपके रॉयल फैमिली है ना, ब्रिटिश रॉयल फैमिली, राइट, ब्रिटिश रॉयल फैमिली के जो ये जो इनके शहजादे होते हैं ना, ये अपने शहजादों को बाकायदा मैदान जंग में भेजते हैं। आज भी इनका जहां पे वो जंग लड़ना तो इनको है, जंगे तो इनकी खत्म नहीं होती, मुसलमानों के इलाकों में आकर के आजकल सारी जंगे लड़े होते हैं। वहां पर इन्होंने अपने प्रिंस को जो है वो जो ये जो क्या नाम है, चार्ल्स किंग जो है ना, उसके जो दोनों बेटे थे, वो दोनों आकर के जो है वो जंगों के अंदर, क्यों क्यों भाई, बेशक वो वहां पे कोई बहुत ज्यादा मेहनत मुशक्कत नहीं भी करते होंगे, लेकिन एक सिंबॉलिक तो है ना उनका, कि हाँ भाई शहजादे हैं लेकिन उनको भी जो है ना उन चीजों का पता होना चाहिए। ठीक है, हमारे यहाँ भी हमेशा से यही था, चाहे जो भी हो उनके औलाद जो है वो घुड़सवारी और ये सारी चीजें सीख रही होती थी, खाली खेल तमाशे के लिए नहीं, बल्कि बाकायदा मजबूत बनने के लिए। ठीक है, जिसको टफ एंड हार्ड बनना भी कहते हैं, वो मर्दों के अलग किस्म के काम होते हैं, औरतों के अलग किस्म के काम होते हैं। ठीक, तो ये उनके लिए खैर ख्वाही है, इस बात को समझें, अगर कोई ऐसी गलती कर रहा है तो चेंज करें इसको। ठीक है, क्या बेटी को घर के काम सिखाते हुए बेटों को भी सिखा सकते हैं, ताकि बेटे को जरूरत पड़ने पे वो आसानी से काम कर सके और उसको ऑकवर्ड ना लगे कभी कोई सिचुएशन के ऊपर। भाई बेटे को भी सिखा सकते हैं, कोर्स सिखा सकते हैं, लेकिन घर के अंदर के काम जो है ना, उसमें जो प्राइमरी फोकस है वो बेटियों के ऊपर, ठीक है ना, घर के बाहर के काम आप ना सिखाएं, आपके घर के जो मर्द हैं, आपके शौहर हैं, आपके वालिद हैं या आपके भाई हैं, वो उसको बाहर के काम सिखाएं। ठीक है, तो दोनों का एरिया एरिया ऑफ कंसर्न और एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस और एरिया ऑफ वर्क जो है ना, वो अल्लाह ताला ने अलग बनाया है, तो उसको अलग रखना है, अगरचे के लड़कों से घर के काम भी जो है वो करवा सकते हैं, नबी अलैहिस्सलाम अपने घर के काम जो है वो करते थे, लेकिन ऐसा नहीं है कि बाहर के काम छोड़ करके करते थे, राइट, दावत का काम, जो जरूरी इल्म है उसका काम, जिहाद का काम छोड़ दिया, घर के अंदर बैठ करके जो है वो काम कर रहे, ऐसा तो नहीं होता। अच्छा, ये दो पॉइंट हजरत ने यहाँ पर रिपीट किए हैं, बाकी है कि मिसाली बेटी का जो मौजू था उसके अंदर बहुत ज्यादा तफसील के साथ हजरत ने भी बयान किया था, और फिर उसके ऊपर मजीद जो हम तशरीहात करते थे वो हम सारी की सारी अल्हम्दुलिल्लाह रिकॉर्डिंग के अंदर मौजूद हैं। अभी आगे बढ़ने से पहले, क्योंकि आगे जो है ना फिर जरा ज्यादा ऐसी बातें नहीं है, वाकयात या मिसालें ज्यादा हैं इसके अंदर आगे, तो इस वक्त एक दो बातें और सुन लीजिए कि शौहर की खिदमत, शौहर से मोहब्बत करना, ये भी एक कॉन्सेप्ट होता है जो कि निकाह से पहले जो है ना वो बेटियों को जहन में आ जाना चाहिए। ठीक है, और ये भी कैसे आएगा, ये माँ की मिसाल से ही आएगा। ठीक है ना, एक तो माँ अपनी मिसाल से बच्चे को सिखाए कि ना भी देखो अब्बा, देखो अब्बू के साथ जो है ना मैं कैसी रिस्पेक्टफुली जो है वो डील बिहेव करती हूँ और जो है वो मोहब्बत करती हूँ उनके साथ। ठीक है, तो इससे ना फिर उनके दिल में शौहर की एक इज्जत अजमत और मोहब्बत का जज्बा ये उनके अंदर पैदा होगा, और एट द सेम टाइम जैसे कि थोड़ी देर पहले बात हुई थी कि बुरे माहौल से बचाना, तो इस मामले में भी बुरे माहौल से बचाना, क्योंकि आज का जो बुरा माहौल है फेमिनिज्म के नाम के ऊपर, वो शादीशुदा जो जिंदगी होती है ना उसकी नफरत को पैदा कर रहे होते हैं। ठीक है, मीडिया के जरिए से और तालीमी निज़ाम के जरिए से, और जाहिर है आपके जो मिलने जुलने वाले होते हैं वो इसी तालीमी निज़ाम से उनका जहन खराब हुआ हुआ होता है, इसी मीडिया को देख देख करके उनका जहन खराब हुआ हुआ होता है, तो अब वो आपकी बेटी को भी जो है ना वो ऐसी बातें और ऐसे मैसेजेस दे रहे होते हैं कि वो फिर शादीशुदा जिंदगी को एक बुरी चीज समझना शुरू हो जाती है, और शौहर के सामने जो है वो झुक के रहना या उसकी खिदमत को जो है ना वो एक बुरी चीज समझना शुरू हो जाती है। ठीक है, तो बुरे माहौल से बचाना इवन इस काम के लिए। ठीक है, पिछले दिनों किसी ने एक चीज शेयर करी थी, तो उसके अंदर बड़े बड़े यानी हंसी मजाक के लहजे में बड़ी जबरदस्त बात उसने बताई हुई थी कि ना एक लड़की जो है वो अपनी सहेलियों से कहने लगी कि अगर अल्फाज तो मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, लेकिन वो ऐसे थे कि बहुत ही जालिम है, बहुत ही जो है ना वो काम चोर है और बस बैठा रहता है, और जो है ना वो खुद कुछ काम नहीं करता है, और ये नहीं ऐसा है वैसा है। तो सहेली ने फौरन कहा, छोड़ दो उसको, ले लो उससे तलाक, ऐसे शख्स के साथ तो जिंदगी गुजारना बिल्कुल भी नहीं चाहिए। तो उसके ऊपर उस लड़की ने जवाब दिया कि मैं अपने बॉस की बात कर रही हूँ, राइट, मैं अपने जॉब के अंदर जो बॉस है ना, मैं उसकी बात कर रही हूँ। तो उसके ऊपर फौरन से सहेली ने कहा, नहीं 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 फिक्र ना करो, करना पड़ता है, सब्र करना पड़ता है, बर्दाश्त करनी पड़ती है, अच्छे करियर बनाने के लिए जो है ना वो सब कुछ सहना पड़ता है, ठीक है। तो देखें ये मिजाज बनता है इस तरीके से, और ये हंसी मजाक की खाली बात नहीं है, दिस इज प्रैक्टिकल, दिस इज रियल, ऐसे ही होता है कि प्रोफेशन को, करियर को जो है ना वो तो लाजिम, और यानी इसके बगैर तो आपका गुजारा नहीं हो सकता, और इसमें तो आपको हर चीज बर्दाश्त करनी जरूरी है, लेकिन शादीशुदा घर नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, फौरन छोड़ दो उसको, फौरन तलाक ले लो उससे, फौरन खुला ले लो जाकर के। और कोर्ट जो है वो आजकल आपको पता है बहुत सपोर्ट करती है लड़की को खुला लेने के अंदर, ठीक है। तो उसके दिल में इस तरह के ख्यालात को पैदा करना, या अपने अमल के जरिए से, अपनी बातों के जरिए से, और इस तरह के जो नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस होते हैं उनसे बचाना, ये दोनों चीजें जरूरी होती हैं। और आखिरी बात ये कि ये एक कॉन्सेप्ट है जो कि हमें अपने अंदर भी लाजिमन पैदा करना है, और अपने औलादों के अंदर भी इसको ट्रांसफर करना है, जो हमारे मशायख जो है ना वो एक वजीफे के जरिए से हमें सिखाते, एक वजीफे के जरिए से, ठीक है ना। वो क्या, हमारे हजरत जो है ना वो अपने, उनको भी शायद उनके शेख ने ये वजीफा दिया था कि अगर कोई गुनाह की तरफ जो है ना वो दिल में पैदा होने लगे मैलान, कोई ऐसी चीज हो, तो इस वजीफे का विर्द करना शुरू कर दो। ये वजीफा है, ला मरगूबी इल्लल्लाह, ला मतलूबी इल्लल्लाह, ला महबूबी इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ठीक है। ला मरगूबी इल्लल्लाह, ला मतलूबी इल्लल्लाह, ला महबूबी इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ठीक है। अब इसके अंदर बड़ी तफसील है, बड़ी गहराई है इसके अंदर, ठीक है ना। तोते की तरह रटने से वैसे कोई खास फायदा नहीं होता, लेकिन इसको समझने से फायदा होता है कि रग़बत जब इंसान की किसी चीज की तरफ शुरू हो जाती है ना, जब रग़बत, जब मैलान, जब उसकी तवज्जो किसी की तरफ बन जाती है रग़बत के साथ, लॉन्गिंग फॉर दैट थिंग, तो अब इसका जो है ना वो सफर शुरू हो जाता है उसकी तरफ, अब इसकी जर्नी शुरू हो जाती है उसकी तरफ। तो रग़बत लीड्स टू तलब, तलब लीड्स टू मोहब्बत, लीड्स टू मोहब्बत, एंड मोहब्बत लीड्स टू इबादत। ये कॉन्सेप्ट इंतहाई जरूरी क्यों है, क्योंकि हम इस गलत फहमी का शिकार हैं, इस मुगालते का शिकार हैं कि हम जो है ना वो बुरी चीजों में इन्वॉल्व हो जाने को समझते हैं कि ये तो हार्मलेस सी चीज है। बुरी चीजें कोई ऐसी नहीं जो कि गुनाह नहीं, गुनाह को तो दीनदार लोग जो है ना वो चले ठीक है समझ लेते हैं कि हाँ भाई ये गुनाह है, गुनाह तो नहीं करना, लेकिन जो चीजें लीड करती हैं गुनाह की तरफ, ठीक है ना, जिनको एक्चुअली शरीयत में मकरूह तंजीही कहा गया, राइट, जो कि जरा दूर की हैं, असबाबे बईदा गुनाह की तरफ ले जाने वाले हैं, उनको मकरूह करार दिया शरीयत ने। तो जब इंसान ऐसी किसी चीज की तरफ मायल हो जाता है ना, अब ये मैदान उसको आगे लेके जाता है, क्योंकि शैतान उसका हाथ पकड़ लेता है, शैतान उसको फिर उसको खींच रहा होता है। अब वो उस चीज को तलब भी करेगा, जब वो तलब करेगा तो उसके लिए मेहनत करेगा, जब जिस किसी चीज के लिए कोई इंसान मेहनत करता है तो अल्लाह ताला का बनाया हुआ उसूल है कि अन लैसा लिल इंसानी इल्ला मा सा, कि इंसान जिस चीज के लिए मेहनत करता है ना उसके लिए वही चीज है, कोई और चीज नहीं है उसके लिए, बल्कि वो चीज है जिसके लिए उसने मेहनत करी, अन लैसा लिल इंसानी इल्ला मा सा, और मा जद्दा मन जद्दा वजदा, जिसने जद्दोजहद करी किसी भी चीज के लिए ना, वजदा वो उसने पा ली, वो चीज उसने पा ली। तो अब जब इसके अंदर तलब पैदा हो गई ना, तो अब जो है ना ये उसको पाने की मेहनत करेगा, जब पाने की मेहनत करेगा तो उसको ये मिल जाएगी, जब मिल जाएगी तो फिर ये उसके साथ वक्त गुजारना शुरू कर देगा, जब वक्त गुजारना शुरू कर देगा तो फिर इसको उससे मोहब्बत हो जाएगी, मोहब्बत हो जाएगी। और ये मोहब्बत जो है ना, अगर यहां पर इसने तौबा नहीं करी, गलत चीज से मोहब्बत से इसने अगर तौबा नहीं करी, तो फिर ये मजीद बढ़ेगी मोहब्बत, और ये बिल आखिर उसको इबादत तक पहुंचाएगी। यानी इबादत का मतलब जरूरी नहीं है कि आप उसको जो है वो सजदे करना शुरू करते हैं, बल्कि इबादत का मतलब क्या होता है कि आप उसको हर दूसरी चीज से ज्यादा फौकियत देना शुरू कर, उसके कहने को हर दूसरे के कहने के ऊपर तरजीह देना शुरू कर, ये इबादत होता है। ठीक है ना? तो हम जो हार्मलेस समझते हैं ना कि हर जी क्या है, हर जी क्या है, राइट, नॉवेलें पढ़ लो, हर जी क्या है, इसमें कोई ऐसी गुनाह वाली बात तो नहीं है, राइट, गैजेट्स के अंदर अपने बच्चों को इन्वॉल्व कर दो, हर जी क्या है, हमने तो इंटरनेट को बंद किया, भाई मोहब्बत पैदा हो गई, इन चीजों की रगबत पैदा हो गई, अब ये रगबत जो है ना वो तलब, तलब से क्या मोहब्बत, मोहब्बत से क्या वो इबादत, ठीक है ना, फिर उसके बाद जो है ना वो आप कुछ नहीं कर सकेंगे। तो इस वजह से माँ बाप का, मुरब्बी का, तरबियत करने वाले का जो 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 इसकी जिम्मेदारी होती है वो होती है कि नुकसानदेह चीजों की तरफ रगबत ही को पैदा ना हो, जो औलाद के लिए नुकसान नुकसानदेह चीज है उसकी तरफ औलाद की रगबत ही ना पैदा होने, क्योंकि अगर रगबत पैदा हो गई देन इट्स आउट ऑफ योर हैंड्स, इट्स आउट ऑफ कंट्रोल। ठीक है, उम्मीद है कि बात समझ में आई होगी, अल्लाह ताला इसके ऊपर अमल की तौफीक भी अता फरमाए। वा आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।